अध्याय 8 भंडारीपन के संबंध में परामर्श। उदारता की भावना स्वर्गीय भावना है। मसीह के आत्म बलिदान का प्रेम क्रूस के ऊपर प्रकट होता है। मानव को बचाने के लिए उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया और अंत में अपने आप को भी। मसीह का क्रूस उस धन्य सृष्टिकर्ता के प्रत्येक राज्य की उदारता के लिए अपील करता है। इस उदाहरण में दान देने के सिद्धांत की व्याख्या की गई। वास्तविक उदारता एवं अच्छे कार्यों में इस सिद्धांत का प्रयोग करना ही मसीही जीवन का यथार्थ फल है। सांसारिक मनुष्यों का सिद्धांत है संचय, केवल संचय, और इस प्रकार वे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु हर तरह से प्रयोग किए जाने पर इसका अंतिम परिणाम दुख और मृत्यु ही होता है। मसीह के क्रूस से चमकता हुआ सुसमाचार का प्रकाश स्वार्थपरता की भावना को धिक्कारता है और परोपकार और उदारता को प्रोत्साहन देता है। दान की बढ़ती हुई मांग के तथ्य पर शोक नहीं प्रकट करना चाहिए। परमेश्वर अपनी दूरदर्शिता के कारण अपने लोगों को उनके सीमित कार्यक्षेत्र से बाहर बड़े बड़े साहस के कामों के लिए बुलाता है। आज जब संसार में नैतिक अंधकार फैल रहा है, असीमित प्रयत्न की आवश्यकता है। परमेश्वर के बहुत से लोगों की सांसारिकता और प्रलोभन में फंस जाने का डर है। उन्हें समझना चाहिए कि परमेश्वर की दया से ही उनके रुपए पैसे के लिए मांगों की वृद्धि हो रही है। ऐसे कार्य जो परोपकार को कार्यान्वित करें, उनके सामने अवश्य रखे जाएं, अन्यथा वे उसे महान उदाहरण के चरित्र के सांचे में नहीं ढल सकेंगे। अपने शिष्यों को आज्ञा देते हुए कि तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मसीह ने लोगों को अपने अनुग्रह के ज्ञान फैलाने का काम सौंपा। परंतु जब कुछ लोग प्रचार को जा रहे हैं, तो वो दूसरों से कहता है कि मेरे दानों का उत्तर दानों या भेंटों द्वारा दो, जिनसे दुनिया में मेरा कार्य संभल जाए। उसने धन संपत्ति को लोगों के हाथों में इसलिए सौंप दिया है ताकि उसके ईश्वरीय वरदान की सरिता मानवीय माध्यम के द्वारा, मानव के द्वारा मानव को बचाने के लिए बहती रहे। ये परमेश्वर का मनुष्य को उच्च करने का एक उपाय है। ये ठीक वही काम है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है, क्योंकि इससे उसके हृदय की गहन सहानुभूति को उत्तेजना होगी और मस्तिष्क को उच्च योग्यता से व्यवहार में लाई जाएगी। यथोचित रीति से निर्देशित उदारता मनुष्य को मानसिक और नैतिक शक्तियों को बढ़ाती है और उन्हें जरूरतमंदों को आशीष और ईश्वर के काम को बढ़ाने की और अच्छे कार्य एवं दया की ओर प्रेरित करती है। किसी जरूरतमंद भाई को मदद करने अथवा सत्य फैलाने में परमेश्वर के कार्य में मदद देने का प्रत्येक अवसर मोती जैसा है, जिसे आप स्वर्गीय बैंक में सुरक्षा निमित्त पहले ही भेजकर जमा करा सकते। जितने अपनी इच्छा से देना चाहें, परमेश्वर ने कुछ अपने कार्य वृद्धि के लिए एक ही साधन नियुक्त किया है, और वह साधन यह है कि वह मनुष्य को धन संपत्ति के वरदान से भरपूर करता है। वह उनको धूप और बारिश देता है, वह वनस्पति को उगाता है, वह रुपया पैसा पैदा करने के लिए स्वास्थ्य और योग्यता देता है। हमारी संपूर्ण आशीषें उसी के उदार हाथ से प्राप्त होती है। वह चाहता है कि बदले में पुरुष, स्त्री, दशमांश तथा भेंटों का एक अंश देकर धन्य बलि, स्वेच्छा बलि, पाप बलि द्वारा अपनी कृतज्ञता को प्रकट करें। तंबू तथा मंदिर के बनाने में यहूदियों की उदारता उस दानशीलता का उदाहरण प्रकट करती है, जिसकी तुलना किसी समय के मसीही ने नहीं की है। वे हाल ही में मिस्र के चिरकालीन दासत्व से मुक्त किए गए थे और अब जंगल में भ्रमणकारी जैसे थे, और अभी अभी वे उस मिस्री से बाल बाल बचे ही थे जो उनका उस झपट की यात्रा में पीछा कर रही थी। कि परमेश्वर का वचन मूसा को पहुंचा इसराइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट ली जाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सभी से मेरी भेंट लेना। निर्गमन 25 आयत 2। उसके लोगों के पास सामान्य सी संपत्ति थी जिसकी वृद्धि की कोई आशा भी नहीं नजर आती थी, परंतु उनके सामने एक लक्ष्य था, परमेश्वर के लिए तंबू बनाने का। परमेश्वर की आज्ञा थी और उनका कर्तव्य था कि उसका पालन करें। उन्होंने किसी वस्तु से अपना हाथ नहीं खींचा, सबों ने स्वेच्छा से दिया, अपनी बढ़ती में से थोड़ा सा भाग नहीं, परंतु अपनी संपत्ति का अधिकतर भाग अर्पण किया। उन्होंने उसे खुशी से और दिल से परमेश्वर को अर्पित किया और ऐसा करने से उसको प्रसन्न किया। क्या वो सब उसी का न था? जो कुछ उनके पास था उसी ने न दिया था? उसने उसकी मांग की। क्या उनका कर्तव्य न था कि अपने महाजन को उसका एक अदा करें? इसमें कोई विवशता की आवश्यकता न थी। लोग जरूरत से भी ज्यादा आए और लोगों से विनय की गई कि और न लाएं, क्योंकि उनके पास आवश्यकता से अधिक आ चुका था। फिर मंदिर बनाने के समय रुपए पैसे की मांग का खुले हृदय से स्वागत किया गया। लोगों ने प्रसन्नता से दिया। उनको बड़ा आनंद हुआ कि परमेश्वर के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी से भी अधिक दान दिया। क्या मसीही जो डींग मारते हैं उनके पास यहूदियों से भी विशाल सत्य हैं, उनसे कम दान दें? क्या वे लोग जो अंत के समय में रहते हैं यहूदियों के आधे दान से भी कम दान से संतुष्ट रहेंगे? परमेश्वर ने प्रकाश और सत्य के फैलाने का काम उन लोगों के स्वेच्छापूर्वक दान पर निर्भर रखा है जो स्वर्गीय वरदानों के भागी हैं। धर्माध्यक्ष और मिशनरी को छोड़ तुलनात्मक रूप में थोड़े ही लोगों को यात्रा करनी पड़ती है, परंतु अनगिनत लोगों को तो सत्य को फैलाने में अपने रुपए पैसे का सहयोग देना पड़ेगा। अच्छा, कोई कहता है कि मांगे तो आती ही रहती हैं, मैं तो देते देते थक गया हूं। क्या आप थक गए हैं? फिर तो मैं आपसे यह प्रश्न करूंगी, क्या आप आशीषों को परमेश्वर के उदार हाथ से पाते पाते थक गए हैं? जब तक वो आपको आशीर्वाद देना रोक न दे, तब तक आप प्रतिज्ञाबद्ध हैं कि उसको वो भाग लौटावें जो उसका है। वो इसलिए आपको आशीर्वाद देता है कि आप भी दूसरों को आशीर्वाद दे सकें। जब आप लेते लेते थक जाएं, तभी आप भली भांति कह सकेंगे कि मैं देने की इतनी बुलाहट व मांगों से थक गया हूं। परमेश्वर को हक है कि वो उसका जो हम प्राप्त करते हैं कि एक अंश अपने लिए मांगे। जब परमेश्वर का भाग परमेश्वर को लौटा दिया जाता है तो बचे हुए भाग पर उसका आशीर्वाद ठहरता है, परंतु जब वो रोक दिया जाता है तो संपूर्ण भाग कभी न कभी श्रापित हो जाएगा। परमेश्वर के हक को प्रथम स्थान देना चाहिए और दूसरे काम को द्वितीय। दशमांश परमेश्वर द्वारा नियत किया गया है। स्वेच्छापूर्वक भेंट तथा दशमांश इंजील की आय है, उस संपत्ति में जो मनुष्य को सौंपी गई है। परमेश्वर एक विशेष अंश पर हक रखता है, केवल दशमांश पर। सबों को स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर का हक हम पर सभी दूसरे हकों से मुख्य है। वो तो हमको बहुतायत से देता है, परंतु जो करार उसने मनुष्य से किया है वो ये है कि उसकी सारी संपत्ति का दशवां भाग परमेश्वर को लौटाया जाए। परमेश्वर उदारता से अपने भंडारियों को अपने कोष सौंपता है, परंतु दशवें भाग के प्रति वो कहता है, यह मेरा है। जिस अनुपात से परमेश्वर ने अपनी संपत्ति हमको दी है, उसी अनुपात से मनुष्य अपने माल का यथार्थ दशमांश परमेश्वर को लौटाए। यह स्पष्ट प्रबंध यीशु मसीह ने स्वयं किया था। यह सामाजिक सत्य पृथ्वी के अंधेरे कोने कोने तक ले जाना चाहिए, जिसका आरंभ घर ही से होना चाहिए। मसीह के शिष्यों को स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिए, परंतु मसीह की आत्मा से प्रोत्साहित होकर उसके संग मिलकर कार्य करना चाहिए।
जो महान कार्य यीशु करने आया था वही पृथ्वी पर उसके शिष्यों को सौंपा गया। उसने अपने लोगों को एक एक उपाय दिया है जिससे वे काफी धन एकत्र कर सकते हैं, जिससे कार्यक्रम स्वावलंबी हो सकता है। परमेश्वर की दशमांश की योजना साधारणता तथा समानता में अति सुंदर है। सब लोग उसको विश्वास और धैर्य से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि उसकी उत्पत्ति ईश्वर की ओर से ही है। उसमें साधारणता और उपयोगिता संयुक्त हैं, और उसके समझने और उपयोग में लाने के लिए उच्च शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं है। सबकी ऐसी भावना हो कि हम त्राण के बहुमूल्य कार्य को आगे बढ़ाने में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा युवक युवती परमेश्वर के खजांची बन सकते और उन मांगों की पूर्ति कर सकते हैं जिनसे कोष में कमी आती है। प्रेरित कहता है, तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें। पहला कुरंथियों 16:2। इस प्रबंध द्वारा बड़े बड़े मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि सब के सब उसे स्वीकार करते तो प्रत्येक परमेश्वर के लिए सचेत और विश्वासपात्र कोषाध्यक्ष बनाया जाता और चेतावनी के अंतिम संदेश फैलाने के महान कार्य में धन दौलत की कोई घटी न होती। यदि सब के सब इस रीति को धारण करें तो खजाना लबालब भर जाएगा और दानी लोग गरीबी नहीं महसूस करेंगे। हर बार जो दान दिया जाएगा उसके द्वारा उनका वर्तमान सत्य के मनोरथ से अधिक घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। वे आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। पहला तिमुथियुस 6:19। जब तत्पर नियमशील कर्मचारी देखेंगे कि उनके परोपकारी प्रयत्नों की प्रवृत्ति से परमेश्वर की और मनुष्य की ओर प्रेम बढ़ता है और उनके व्यक्तिगत प्रयत्नों द्वारा उनकी प्रतियोगिता के मंडल में वृद्धि हो रही है, तो वे महसूस करेंगे कि मसीह के साथ काम करने में बड़ी आशीषा मिलती है। मसीही कलीसिया साधारणतया अपने ऊपर परमेश्वर के हक को अपनाए नहीं रही है कि अपनी संपत्ति में से दान देवें, जिससे नैतिक अंधकार के विरुद्ध छिड़े हुए युद्ध में सहायता हो। जब तक मसीह के अनुयायी फुर्तीले और उत्साही कर्मचारी न बने, परमेश्वर का काम कभी ऐसी उन्नति नहीं कर सकता जैसी करनी चाहिए। परमेश्वर के साथ सहकारी बनने का सौभाग्य। परमेश्वर अपने काम को संभालने के लिए मनुष्य पर निर्भर नहीं करता। वह अपने खजाने को भरपूर रखने के लिए धन सीधे स्वर्ग से भेज देता। यदि दृष्टि से उसने इसे मनुष्य के लिए अत्युत्तम समझा होता, वह ऐसी युक्ति निकाल सकता जिसके द्वारा सत्य के प्रचार करने के हेतु स्वर्गदूत जगत को भेजे जा सकते। वह सत्य को आकाशों ही पर लिख डालता और उसके द्वारा अपनी मांगों को जीवित अक्षरों में जगत पर घोषित करता। परमेश्वर किसी व्यक्ति के सोना चांदी पर आश्रय नहीं रखता। वह कहता है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। भजन संहिता 50:10-12। परमेश्वर के काम की उन्नति के हितार्थ जो कुछ आवश्यक है उसकी उसने जान बूझ कर हमारी भलाई के लिए रखा है। उसने अपना सहकारी बनाकर हमें सम्मानित किया है। परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है कि मानव के सहयोग की आवश्यकता पड़े कि वे अपनी दयाशीलता को व्यवहार में लाते रहें। नैतिक व्यवस्था सब्बत के मानने की आज्ञा देती है, जो एक बोझ नहीं, सिवाय उस समय के जब उस व्यवस्था का उल्लंघन किया जाए और उसको तोड़ने के कारण दंड के भागी हो जाएं। दशमांश का नियम उन लोगों के लिए कोई भार नहीं था जो उस योजना से विमुख नहीं हुए थे। जो नियम इब्रानियों को दिया गया था उसका आविष्कारक द्वारा न तो खंडन ही हुआ न शिथिल ही किया गया, बजाय उसके अब अप्रचलित होने से उसका और पूर्णता से तथा विस्तृत रूप से उसी प्रकार पालन करना चाहिए जिस प्रकार त्राण केवल मसीह के द्वारा मसीही युग में अधिक स्पष्टता से प्रकाशित करना चाहिए। मसीह की मृत्यु के बाद जब सुसमाचार फैलने लगी तो युद्ध को प्रचलित रखने के लिए बड़े बड़े सामान की आवश्यकता हुई। इस कारण दान देने का नियम इब्रानी शासन के समय से भी अधिक अनिवार्य बन गया। आज परमेश्वर उनसे भी बड़े बड़े दानों की मांग करता है, कम की नहीं, जो दुनिया के किसी काल में लिए गए हों। मसीह ने जो सिद्धांत कायम किया सो यह है कि हमारे दान व भेंट उस प्रकाश तथा उन वरदानों के अनुसार हों जो हमने प्राप्त किए हैं। उसने कहा है, जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। लूका 12:48। परमेश्वर के वचन से एक मशाल तेजी के साथ चमक रही है, अतः अब खोए हुए अवसरों की ओर से जागृति होनी चाहिए। जब सब लोग परमेश्वर का हक दशमांश और भेंटों को अदा करने में विश्वास योग्य होंगे तो लोगों के लिए इस समय के संदेश को सुनने की राह खुल जाएगी। यदि परमेश्वर के लोगों के हृदय मसीह के प्रेम से भरे होते, यदि प्रत्येक मंडली का सदस्य आत्म बलिदान की भावना से पूर्ण रीति से प्रभावित होता, यदि सब के सब अधिपति पूर्ण उत्साह प्रकट करते, तो मिशन के काम के लिए स्वदेश में हो या विदेश में धन की कोई कमी न होती। हमारी पूंजी में कई गुना वृद्धि होती, उपयोगिता के हजारों द्वार खुल जाते और प्रवेश करने को आमंत्रण मिलता। यदि परमेश्वर के मनोरथ का उसके लोगों द्वारा संसार को दया का संदेश पहुंचाने में पालन किया जाता
तो मसीह कभी का पृथ्वी पर आ गया होता। पवित्र जनों का परमेश्वर के नगर में स्वागत हो चुकता। परमेश्वर पैदावार का दसवां भाग चाहता है। दशमांश का नियम मूसा के काल से भी पूर्व से चला आ रहा है। मनुष्यों से मूसा के विशेष नियम देने से पूर्व आदम के दिनों तक मांग की जाती थी कि धार्मिक कार्य के लिए परमेश्वर को दान चढ़ावें। परमेश्वर की मांगों को स्वीकार करने में वे भेंटों द्वारा परमेश्वर की करुणाओं तथा वरदानों के संती अपनी कृतज्ञता प्रकट करते। आने वाली पीढ़ियों में ये कार्य जारी रहा। इसका इब्राहिम ने पालन किया, जिसने मलकिसिदक परमेश्वर के याजक को दशमांश दिया था। यही सिद्धांत अय्यूब के दिनों में उपस्थित था, जब याकूब निर्वासित तथा निर्धन आवारा की तरह बैतेल में रात्रि के समय सुनसान वीरान में एक पत्थर सिरहाने रखकर लेट गया तो उसने परमेश्वर से वाचा बांधी, जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। उत्पत्ति 28 आयत 22। परमेश्वर लोगों को दान देने पर विवश नहीं करता। जो कुछ लोग दें स्वेच्छा से हो। अनिच्छुक दान द्वारा वो अपने खजाने को न बढ़ाएगा। कितनी रकम की आवश्यकता है परमेश्वर ने स्पष्टता से दर्शा दिया है। उपज का दसवां भाग। ये बात लोगों के अंतःकरण और दयाशीलता पर छोड़ दी गई है कि वे दशमांश के नियम में अपना विवेक स्वतंत्रता से प्रयोग करें। यद्यपि दशमांश का सिद्धांत विवेक पर छोड़ दिया गया है, फिर भी एक योजना बनाई गई है जो सबके लिए स्पष्ट है। इसमें कोई विवशता का प्रश्न नहीं है। परमेश्वर ने मूसा के समय में लोगों से चाहा था कि वे अपनी सारी पैदावार का दशवां भाग देवें। उसने उन्हें जीवन के सारे पदार्थ सौंपे और बुद्धि के हेतु योग्यताएं दी ताकि उन्हें फिर उसी को लौटा दी जाएं। वो कहता है, मैं तुम्हें 9 भाग देता हूं और 1 भाग मांगता हूं जो मेरा है। जब लोग दसवां भाग रोक लेते हैं तो वे परमेश्वर को लूटते हैं। उनको बढ़ती के दसवें भाग के अलावा पाप बलि, मेल बलि, डेफिनेशनी की भी मांग होती थी। जो कुछ परमेश्वर दावा करता है, अर्थात उपज का दसवां, उसमें से जो कुछ रोक लिया जाता है वो रोकने वाले के विरुद्ध स्वर्गीय पुस्तकों में चोरी व डकैती जैसी दर्ज की जाती है। ऐसे लोग सृजनहार को ठगते हैं और जब लापरवाही का ये पाप उनके सामने लाया जाता है तो ये काफी नहीं है कि वे अपना ढंग बदल डालें और उस समय से आगे यथोचित सिद्धांत पर चलने लगें। इससे उस संपत्ति के अपहरण के लिए जो उन्हें धरोहर के रूप सौंपी गई थी कि वे उसे महाजन को वापस करें, स्वर्गीय बही के आंकड़ों में कोई संशोधन न होगा। परमेश्वर के संग बेईमानी के लेन देन करने और कृतज्ञता के लिए पश्चाताप की आवश्यकता है। जब कभी परमेश्वर के लोगों ने किसी भी युग में उसकी योजना का खुशी से तथा इच्छापूर्वक पालन किया है और उसकी मांगों को स्वीकार किया है, अपनी संपत्ति से उसका सम्मान किया है, तो उनके खलिहान बहुतायत से भर गए। परंतु जब जब वे परमेश्वर को दशमांश अथवा भेंटों में ठगते थे, उनको महसूस कराया गया कि वे न केवल उसको ही ठगते थे परंतु आपको भी ठगते थे, क्योंकि उसने अपनी आशीषों को उन तक उसी अनुपात से सीमित कर दिया जिस अनुपात से उन्होंने अपनी भेंटें सीमित कर दी थीं।
जो मनुष्य दुर्भाग्यवश ऋणी हो जाता है, उसको परमेश्वर के हिस्से में से अपने पड़ोसी का ऋण नहीं चुकाना चाहिए। उसको सोचना चाहिए कि इस प्रकार के लेन देन में उसकी जांच हो रही है और परमेश्वर का भाग अपने लाभ के लिए रोक लेने में वो दाता को लूट रहा है। प्रथम वो सारी संपत्ति के लिए जो उसके पास है परमेश्वर का ऋणी है। अब वो 2 गुना ऋणी हो जाता है जब वो परमेश्वर का हिस्सा रोककर मनुष्यों का कर्जा चुकाता है। स्वर्ग की पुस्तकों में उसके नाम के आगे परमेश्वर का विश्वासघाती लिखा जाता है। उसको परमेश्वर के साथ हिसाब चुकता करना है, क्योंकि उसने परमेश्वर के रुपए पैसे को अपनी सुविधाओं में लगाया है। परमेश्वर के रुपए के अपहरण में जिस सिद्धांत का हनन किया गया, वही दूसरे विषयों के प्रबंध में भी प्रत्यक्ष नजर आएगा। वो उसके कारोबार में भी दिखाई देगा। जो मनुष्य परमेश्वर को ठगता है, वो ऐसे चाल चलन का पोषण कर रहा है जो उसको परमेश्वर के परिवार में शामिल होने से पृथक रखेगा। परमेश्वर दानों का मूल्य प्रेम उत्तेजित त्याग के अनुसार लगता है। मंदिर की तराजू में कंगाल के प्रेम प्रेरित दान का मूल्यांकन दी गई रकम के अनुसार नहीं लगाया जाता, परंतु प्रेम प्रेरित भेंट के अनुसार होता है। उदार हृदय कंगाल मनुष्य जिसके पास देने को थोड़ा है, परंतु उस थोड़े को खुशी से देता है, यीशु की प्रतिज्ञाओं से उसी प्रकार लाभ उठा सकता है जिस प्रकार धनवान पुरुष उठा सकता है जो अपनी बहुतायत में से देता है। कंगाल मनुष्य अपनी घटी में से त्याग करता है जिसकी वो सचमुच महसूस करता है। ये तो सचमुच में अपनी आवश्यकीय सुखद चीजों का इनकार करके न अपनी किसी भी आवश्यकीय वस्तु का इनकार करता है। इसलिए गरीब के दान में वो पवित्रता पाई जाती है जो धनवान के दान में नहीं पाई जाती, क्योंकि धनवान तो अपनी बहुतायत में से देता है। परमेश्वर ने दूरदर्शिता से सुव्यवस्थित दानशीलता की समस्त योजना मनुष्य की भलाई के लिए रची है। उसकी दूरदर्शिता खामोश खड़ी नहीं रहती। यदि परमेश्वर के दास उसकी प्रारंभिक दूरदर्शिता का अनुकरण करें तो सब के सब सक्रिय कर्मचारी बनेंगे। छोटे बालकों के दान परमेश्वर को स्वीकार तथा पसंद हो सकते हैं। भावना के अनुसार जो दान को प्रेरित करती है मूल्य आंका जाता है। प्रेरित के नियम का अनुकरण करने और प्रति सप्ताह कुछ रकम छोड़ने द्वारा गरीब लोग खजाने की वृद्धि में सहायक होते हैं और उनके दान पूर्णतया परमेश्वर को स्वीकृत होते हैं, क्योंकि वे उतना ही बड़ा बलिदान बल्कि उससे भी बड़ा बलिदान करते हैं जो उनके धनवान बंधु करते हैं। नियमानुसार दानशीलता की योजना प्रत्येक परिवार के लिए इस रुपये को किसी अनावश्यक कार्य में व्यय करने के प्रलोभन में पड़ जाने के प्रति एक सुरक्षा सिद्ध होगी, विशेषकर धनवानों को फजूल खर्ची से बचाने में एक वरदान प्रमाणित होगी। संपूर्ण हृदय की उदारता के प्रतिफल द्वारा ही मन और हृदय का पवित्र आत्मा की निकटता में नेतृत्व होता है। परमेश्वर के कार्य के लिए दान देने के विषय में पौलुस एक नियम नियुक्त करता है और बतलाता है कि उसका हमारे प्रति और परमेश्वर के प्रति क्या परिणाम होगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करें, न कुड़कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परंतु बात तो ये है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत हो। जैसे लिखा है, उसने बिथराया, उसने कंगालों को दान, उसका धर्म सदा बना रहेगा। कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 9 आयत 6-11। संपत्ति का यथोचित बंटवारा। माता पिता को जब मन स्वस्थ और विवेक दुरुस्त है, प्रार्थना के साथ और योग्य परामर्शदाताओं की सहायता से, जिनको सत्य का अनुभव और ईश्वरीय इच्छा का ज्ञान है, अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए।
यदि उनके पास बच्चे पीड़ित हैं जो गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं और जो रुपये पैसे का बुद्धिमानी के साथ उपयोग कर सकते हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए। परंतु यदि उनके पास अविश्वासी बालक हैं जिनके पास इस जगत का धन बहुतायत के साथ है पर संसार की सेवा कर रहे हैं, तो वे अपने स्वामी के विरुद्ध पाप कर रहे हैं जिसने उन्हें अपना भंडारी बनाया है, क्योंकि उसने उनके हाथों में धन दौलत सौंपी है केवल इसीलिए कि वे उनकी संतान हैं। परमेश्वर के दावों का निरादर नहीं करना चाहिए। ये बात स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि यदि माता पिता ने वसीयत लिख दी है तो ये बात उनको जब तक वे जीवित हैं परमेश्वर के काम के लिए दान देने से नहीं रोकेगी। दान तो उनको देने ही चाहिए। उनको यही संतुष्टता होनी चाहिए जिसका प्रतिफल तो बाद में मिलेगा, कि उन्होंने अपने अतिरिक्त रुपए पैसे का जीते जी ठीक व्यवहार किया। उन्हें परमेश्वर के कार्य को आगे आगे बढ़ाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उनको उस रुपए पैसे को जो उनके स्वामी की ओर से उधार मिला है परमेश्वर की दाख की बारी में उपयोग करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर के खजाने में दान देने से हाथ खींचते हैं और अपनी धन संपत्ति को अपने बच्चों के लिए संचय करते हैं,
वे अपने बालकों के आध्यात्मिक हितों को खतरे में डालते हैं। वे अपनी संपत्ति को, जो स्वयं उनको ठोकर खिलाने वाली है, अपने बालकों की राह में रखते हैं कि वे भी ठोकर खाकर विनाश को पहुंचें। बहुत से लोग इस जीवन के मामलों में भारी भूल कर रहे हैं। वे अपने से और दूसरों से उस वरदान को, जो उन्हें परमेश्वर की ओर से उधार दी गई धन संपत्ति के उचित उपयोग से प्राप्त हो सकता है, रोककर बचत दिखाते हैं और धार्मिक वृद्धि की ओर ठिंगने ही रह जाते हैं। ये सब उस धन संचय के कारण से होता है जिसे वे प्रयोग नहीं कर सकते। वे अपनी जायदाद अपनी संतान को छोड़ जाते हैं और वो उनके वारिसों के लिए उनकी अपेक्षा 90% भारी श्राप का कारण बन जाती है। उनकी संतान जो बपौती जायदाद पर आश्रय करती है, अक्सर इस जीवन में सफल नहीं हो पाती और आम तौर पर आने वाले जीवन को प्राप्त करने में सर्वथा निष्फल रहती है। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगा। दशमांश की विशेष नीति का स्थापन एक सिद्धांत के ऊपर हुआ था, जो परमेश्वर की व्यवस्था के समान सुदृढ़ है। दशमांश की नीति यहूदियों के लिए एक वरदान थी, अन्यथा परमेश्वर उनको कभी ये नियम न देता। इसी प्रकार ये उनको भी एक वरदान सिद्ध होगा, जो उसका अंत के समय तक पालन करेंगे। वे कलीसियाएं जो परमेश्वर के कार्य को संभालने में सबसे अधिक नियमशील और उदार हैं, वे ही आत्मिक रूप से सबसे अधिक फलती फूलती हैं। मसीह के शिष्य की सच्ची उदारता उसके और उसके स्वामी के हितों में अनुकूलता दिखलाती है। यदि धन संपत्ति वाले ये महसूस करें कि वे प्रत्येक रुपए के लिए जिसे वे खर्च करते हैं परमेश्वर के सामने जिम्मेवार हैं, तो उनकी कल्पित आवश्यकताएं बहुत कम हो जाएंगी। यदि अंतःकरण जीवित हो तो वो क्षुधा की तृप्ति करने के लिए व्यर्थ सामग्री के प्रति और अभिमान, माया तथा मन बहलाव की बातों से प्रीति रखने के प्रति और परमेश्वर के उस रुपये उड़ा देने की, जिसके विरुद्ध उसकी सेवा में व्यय होना चाहिए था, साक्षी देगा। जो अपने स्वामी की संपत्ति को नष्ट करते हैं, उन्हें अपने कार्य के लिए मालिक को कभी न कभी हिसाब देना होगा। यदि नाम के मसीही अपनी देह के सवारने में तथा अपने घरों के सौंदर्य को बढ़ाने में अपने धन का न्यूनांश व्यय करते और अपनी मेज के अतिव्यय स्वास्थ्य नाशक द्रव्य पदार्थ में कम पैसा उड़ाते, तो वे परमेश्वर के खजाने में बड़ी बड़ी रकमें डाल सकते। इस प्रकार वे अपने त्राणकर्ता का अनुकरण करते, जिसने स्वर्ग, अपनी दौलत, अपनी महिमा त्याग कर हमारी खातिर कंगाल बन गया, ताकि हमें अनंत धन प्राप्त हो सके। परंतु बहुत से लोग, जब वे संसार की दौलत इकट्ठा करने लगते हैं, ये हिसाब लगाते हैं कि कितनी देर के बाद उनके हाथ में एक खासी रकम जमा हो जाएगी। अपने लिए धन संचय करने की चिंता में वे परमेश्वर की ओर धनाढ्य होने में असफल होते हैं। उनकी दानशीलता उनके धन संचय के साथ कदम व कदम नहीं चलती। जैसे उनकी लगन धन के लिए बढ़ती जाती है, वैसे उनकी प्रीति उनके खजाने धन से घट जाती है। उनकी संपत्ति की वृद्धि धन प्राप्त करने की इच्छा को तब तक प्रोत्साहन देती है, जब तक कि कुछ लोग ये न सोचने लगे कि दशमांश देना एक कठोर तथा अनुचित कर है।
प्रेरणा ने कहा है, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन लगाना। भजन संहिता 62:10। बहुतों ने कहा है, यदि मैं अमुक व्यक्ति की भांति धनवान होता तो मैं परमेश्वर के खजाने को अपने दानों से भर देता। मैं अपने धन से और कुछ न करता सिवाय उसे परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाने में उपयोग करने के। इनमें से कुछ लोगों को परमेश्वर ने धन देकर जांच की है, परंतु धन के साथ साथ भयंकर प्रलोभन भी आ मौजूद हुआ और उनकी दानशीलता उनके दरिद्रता के दिनों से भी बहुत कम हो गई। अधिक धन प्राप्ति की अभिलाषा में उनके मन व हृदय डूब गए और वे मूर्ति पूजा के पाप में पड़ गए। जो वाचा परमेश्वर से बांधी जाए वह लागू तथा पवित्र है। प्रत्येक अपने स्वयं का पंच है और दान देने का अधिकार रखता है, जैसा वह अपने मन में ठाने। परंतु ऐसे भी लोग हैं जो हनन्या और सफीरा के पाप के दोषी हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे दशमांश का एक भाग अपने लिए रोक लें तो भाई लोगों को कभी भी पता न लगेगा। ऐसा ही उस अपराधी दंपति ने सोचा था, जिनका उदाहरण हमारे सामने चेतावनी के रूप में प्रकट किया गया है। इस मामले में परमेश्वर प्रमाणित करता है कि वह हृदयों को जांचता है। मनुष्य के इरादे व अभिप्राय उससे छिपे नहीं रह सकते। उसने हर युग के मसीहियों को एक सार्वकालिक चेतावनी दी है कि उस पाप से सावधान रहें जिसकी ओर मनुष्यों के मन निरंतर झुक जाते हैं। जब दान के संबंध में मौखिक अथवा लिखी प्रतिज्ञा भाइयों के सामने की जाती है, तो वे परमेश्वर और हमारे बीच बंधी वाचा के प्रत्यक्ष साक्षी बन जाते हैं। प्रतिज्ञा मनुष्य से नहीं, किंतु परमेश्वर से की जाती है, और वह पड़ोसी को दी गई एक लिखी हुंडी की भांति है। कोई भी व्यवस्थानुसार पट्टा मसीही पुरुष पर रुपए की अदायगी के लिए नहीं है, जितना परमेश्वर से की गई प्रतिज्ञा। जो मनुष्य अपने बंधु से ऐसी प्रतिज्ञा बांधता है, कभी उससे मुक्त होने की विनती नहीं करता। सारी कृपाओं के दाता से बांधी गई वाचा तो और भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तो फिर क्यों मुक्त होने की चेष्टा करें? तब क्या मनुष्य अपनी प्रतिज्ञा को इसलिए हल्की समझे कि परमेश्वर से की गई है? इसलिए कि उसका प्रण न्यायाधीश के विचारधीन नहीं लाया जाएगा, तो क्या वह पक्का नहीं है? क्या वह पुरुष जो स्वीकार करता है कि उसका यीशु मसीह के असीम बलिदान के लोहू से उद्धार हुआ है, परमेश्वर को लूटना? क्या उसकी प्रतिज्ञाएं और उसके काम स्वर्गीय न्यायालय की तराजू में नहीं तोले जाएंगे? कलीसिया अपने सदस्यों की लिखी प्रतिज्ञाओं का उत्तरदायी है। यदि वे मालूम करें कि अमुक भाई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में अवहेलना कर रहा है, तो वे उसके संग दयाशीलता परंतु स्पष्टता से परिश्रम करें। यदि वह ऐसी हालत के अधीन है जिससे वह ऐसी हालत के अधीन है जिससे उसको अपनी प्रतिज्ञा रखना असंभव है, और वह एक योग्य सदस्य और सुहृदय है, तो मंडली को दयाशीलता के साथ उसकी सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार वे कठिनाई को सरल बनाकर स्वयं आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कृतज्ञता का दान कंगालों के लिए अलग रखना चाहिए। प्रत्येक गिरजे में गरीबों के लिए कोष नियुक्त करना चाहिए। फिर हर एक सदस्य सप्ताह में अथवा महीने में एक बार जैसी सुविधा हो धन्यवाद की भेंट लावे। इस भेंट द्वारा हम स्वास्थ्य, भोजन और सुखदायी वस्त्र के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं, और जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें ये आशीषें दी हैं, उसी अनुपात से हम दीन दुखियों और पीड़ितों के लिए दान निकाल के अलग रखते हैं। मैं अपने भाइयों का ध्यान विशेषकर इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं। कंगालों को स्मरण रखिए, अपने भोग विलास सुख चैन को त्याग कर उनकी सहायता कीजिए, जिनको केवल अधपेट भोजन तथा वस्त्र मिलता है। उनकी सहायता करने में आप उसके पवित्र जनों की शक्ल में यीशु की सहायता कर रहे हैं। वह पीड़ित मानव के संग अपने को शामिल करता है। जब तक आपकी कल्पित आवश्यकताओं की पूर्ति न हो जाए, तब तक न ठहरिए। अपनी इच्छा पर भरोसा न कीजिए कि जब मन न चाहे तो रोक दें। नियमानुसार देते रहिए। यदि आप परमेश्वर के स्वर्गीय आंकड़ों में अपना नाम देखना चाहते हैं,
जो परमेश्वर को सच्चे मन से प्यार करते और धन संपत्ति रखते हैं, उनको मुझे आज्ञा हुई है कि कहूं, अब आपके लिए मौका है कि अपने रुपए को परमेश्वर के काम संभालने में लगा दें। अब मौका है कि धम्म अध्यक्षों के साथ नाश होने वाले लोगों को बचाने में उनके आत्मत्याग के प्रयत्नों में हाथ बटावें। जब आप उन लोगों को जिन्हें आपने बचाने में सहायता दी स्वर्गीय डेवरियों में मिलोगे, तो क्या आपको महिमापूर्ण प्रतिफल ना मिलेगा? कोई दमड़ी का दान देने से अपना हाथ न रोके, और जिनके पास बहुत कुछ है आनंदित हों कि वे स्वर्ग में अपनी दौलत जमा कर सकते हैं, जहां हानि का भय नहीं है। जो धन परमेश्वर के काम में लगाने से इनकार करते हैं वो नष्ट हो जाएगा, उन पर स्वर्गीय बैंक में कोई ब्याज नहीं लगेगा। परमेश्वर अब प्रत्येक मोहल्ले के सेवंथ डे एडवेंटिस्टों को पुकारता है कि अपने आप को समर्पण करो, और जहां तक हो सकता है हालत के अनुसार उसके काम में मदद दो। दान तथा भेंट देने में उदारता दिखलाने से उसकी इच्छा है कि वे उसकी आशीषों तथा उसकी करुणा के लिए कृतज्ञता प्रकट करें। प्रभु ने बार बार मुझे दिखलाया कि संकट के समय में शारीरिक आवश्यकताओं के लिए प्रबंध करना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। यदि पवित्र जनों ने संकट के समय अपने पास या खेत में भोजन रखा हो
जब तलवार, अन्नकाल तथा मरी देश में आए तो कठोर हाथों द्वारा वो सब उनसे छीन लिया जाएगा और परदेशी उनके खेतों की फसल काटेंगे। वो समय हमारा पूर्णतः परमेश्वर पर भरोसा रखने का होगा और वही हमें संभालेगा। मैंने देखा कि उस समय हमें रोटी और पानी अवश्य पहुंचाया जाएगा और हमें कमी न होगी न भूख सताएगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए जंगल ही में मेज बिछाने के योग्य है। यदि आवश्यकता हो तो वो हमें खिलाने के लिए कौओं को भेजेगा, जिस प्रकार उसने एलिया को खिलाया था, अथवा स्वर्ग से मन्ना बरसाएगा, जिस प्रकार उसने इसराइलियों के लिए किया था। संकट के समय घर और भूमि पवित्र जनों के लिए लाभदायक न होंगे, क्योंकि उस समय उनको क्रुद्ध भीड़ के सामने से भागना पड़ेगा। उस समय उनकी जायदादें बेची नहीं जा सकती कि वर्तमान सत्य को फैला सकें। मुझे दिखाया गया कि परमेश्वर की इच्छा है पवित्र जनों को संकट के समय से पहले प्रत्येक उलझन से मुक्त होना चाहिए और परमेश्वर के साथ त्याग द्वारा वाचा बांधनी चाहिए। यदि उनकी धन संपत्ति वेदी पर है और उत्साह पूर्वक परमेश्वर से प्रार्थना करें कि क्या करें, तो वो उनको सिखलाएगा कि उन चीजों को कब बेच डालना चाहिए। तभी वे संकट के समय स्वतंत्र हो सकेंगे और उनको कोई भार नहीं रोकेगा। आत्मत्याग और बलिदान की भावना। त्राण की योजना की बुनियाद परमेश्वर के पुत्र के असीम बलिदान के ऊपर रखी गई। सुसमाचार का प्रकाश, जो मसीह के क्रूस से चमकता है, स्वार्थपरता की निंदा करता तथा उदारता और दयाशीलता को प्रोत्साहन देता है। इस तथ्य पर खेद नहीं करना चाहिए कि दान की पुकारें बढ़ती जा रही हैं। परमेश्वर अपनी दूरदर्शिता के कारण अपने लोगों को उनके सीमित कार्यक्षेत्र से बाहर साहस के बड़े बड़े कामों के लिए बुलाता है। आज जब संसार में नैतिक अंधकार फैल रहा है, तो असीमित प्रयत्न की अत्यंत आवश्यकता है। सांसारिकता तथा लालच परमेश्वर के लोगों के प्राणों को चाट रहा है। उनको समझना चाहिए कि उसी की कृपा से उनके रुपए पैसे के लिए मांगे बढ़ रही हैं। परमेश्वर का दूत दयाशीलता के कार्यों को प्रार्थना के बराबर बराबर रख देता है। उसने कुरनेलियुस को कहा था, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए ईश्वर के पास पहुंचे हैं। प्रेरितों के काम 10:4।
अपने घरों में मित्र व्ययता की आदत डालो। कई एक द्वारा प्रतिमाओं का लाड़ प्यार तथा उपासना की जाती है। अपनी मूर्तियों को अलग कीजिए। अपने स्वार्थपूर्ण भोग विलास को त्याग दीजिए। मेरी विनती है कि अपने घरों को आभूषित करने में अपने रुपए पैसे का शोषण न कीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर का रुपया है और ये आपसे फिर तलब किया जाएगा। माता पिताओं, मसीह की खातिर परमेश्वर के पैसे को अपने बालकों की अभिलाषाओं को तृप्त करने में न खर्च कीजिए। उनको सिखलाइए कि वे बनने ठन्ने व आडंबर की चेष्टा न करें, ताकि संसार पर उनका प्रभाव हो। क्या इससे वे उन आत्माओं को बचाने की ओर झुकेंगे जिनके लिए मसीह ने प्राण दिया है? नहीं, इससे ईर्ष्या, डाह और शंका की भावना उत्पन्न होगी। आपके बच्चे संसार की टीपटाप और अपव्यय के साथ होड़ लगाने लगेंगे और प्रभु के रुपए पैसे को उस वस्तु में खर्च करेंगे जो स्वास्थ्य अथवा सुख के लिए अनावश्यक है। अपने बालकों को ऐसी शिक्षा न दीजिए कि वे सोचें कि आपका प्रेम उनके घमंड, अपव्यय और धूमधड़ाके के लालन पालन द्वारा प्रकट होता है। अब समय नहीं रहा कि रुपए को उपयोग करने के लिए उपाय ढूंढे जाएं। अपनी निर्माण शक्ति का प्रयोग कीजिए कि किस प्रकार कम खर्च करें। स्वार्थ इच्छाओं की तृप्ति के बजाय उन वस्तुओं के लिए पैसा खर्चना जो विवेक शक्ति को नष्ट करना है। अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं को मारना सीखो, ताकि आपके पास नए क्षेत्र में सत्य के झंडे को ऊंचा करने के लिए कुछ हो। बुद्धि एक योग्यता है, उसको उपयोग में लाना सीखो कि आप अपने धन को किस उत्तम रीति से लोगों के त्राण में प्रयोग कर सकते हैं। जो दूसरों के कल्याणार्थ अपनी इच्छाओं को मारते हैं, जो अपने तई और सर्वस्व मसीह की सेवा में अर्पण करते हैं, वे उस सुख का अनुभव करेंगे जिसकी खोज स्वार्थी मनुष्य व्यर्थ कर रहा है। हमारे त्राणकर्ता ने कहा है, जो कोई अपना सर्वस्व त्याग न करे वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। लूका 14:33। प्रेम अपस्वार्थी नहीं है।
ये उस निस्वार्थ प्रेम व दयाशीलता का फल है जो मसीह के जीवन में चरितार्थ था। हमारे हृदय में परमेश्वर की व्यवस्था हमारे स्वयं के हितों को श्रेष्ठ और अनादि मनोरथों के अधीन कर देगी।